जय माँ। श्री अरविंद ने इस योग को अलग अलग समय पर अलग अलग नाम दिए हैं। योग एक ही है, लेकिन उसको देखने का एक दृष्टि बिंदु है और उसमें कौन से एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसके अनुसार नाम दिए गए हैं। इसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं। तो उनमें से एक नाम है परफेक्शन, योगा ऑफ सेल्फ परफेक्शन, योगा ऑफ डिवाइन परफेक्शन, योगा ऑफ सुप्रामेंटल परफेक्शन। सो एक शब्द आता है बार बार इस योग में, परफेक्शन। तो परफेक्शन क्या है ये आवश्यक है, क्योंकि परफेक्शन जितने भी शब्द हैं उनसे हमारे मन के अंदर एक अर्थ निकलता है जो हमने ट्रेडिशनली सीखा हुआ है। ट्रेडिशनली माने शब्दों के अर्थ से। तो आमतौर से जब लोग परफेक्शन की बात करते हैं तो उनको लगता है कि हमें टेबल एकदम अच्छे से रखनी चाहिए और सब चीज़ें अच्छे सुंदर ढंग से सजा के करनी चाहिए। वो अच्छी बात है, लेकिन परफेक्शन का अर्थ ये नहीं है। वो करना चाहिए, मतलब चीज़ें टाइडी होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, वो ऑर्डर है। एक व्यवस्था अच्छी रहती है अगर आप उसके प्रति बहुत रिजिड ना हो जाओ। खैर वो एक अलग विषय है। ये नहीं है कि कोई परफेक्शन के नाम पर अगर टेबल को बहुत अच्छे से सजा रहा है तो वो योगा सेल्फ परफेक्शन कर रहे हैं। इसलिए श्री अरविंद जो शब्द यूज करते हैं बड़े चुन करके, सेल्फ परफेक्शन। अब उस सेंस में अगर हम देखें तो स्पष्ट होता है कि परफेक्शन क्या है। हिंदी में बहुत सिंपल है, पूर्णता यानी पूर्ण होना। तो पूर्ण होने का अर्थ क्या है, और इससे एक छोटा सा वो भी बात निकल के आती है कि जब एक पुष्प है उसको भगवान के चरणों में हम अर्पित करते हैं तो कब करते हैं, वो जब कली के रूप में होता है या मुरझाए रूप में होता है, वो जब खिला हुआ होता है। तो कई बार ये बात, कई बार लोग बहुत जल्दी जल्दबाजी में आश्रम भी आ जाते हैं, वहाँ रहने लगते हैं, उनको लगता है कि बस हमने पढ़ लिया, जान लिया, दे वॉन्ट टू कम। लेकिन पहले आपको एक विकसित पुष्प, नहीं तो क्योंकि जब वो विकसित हो जाता है टू सम एक्सटेंट तो उसको आप ऑफर कर सकते हो। तो वो टू सम एक्सटेंट क्या है, अब यहाँ पे समस्या शुरू होती है। अगर हम किसी पशु को देखें तो हम कहेंगे उसके लिए पूर्णता का क्या अर्थ होगा, पूर्ण यानी कंप्लीट, तो उसका समुचित विकास हो जाए पशु के लिए। टाइगर कब है या लायन कब है, सिंह का शावक है वो जब पूरा सिंह बन जाता है अपने आप में, वो हर तरह से पूरी तरह एक सिंह की तरह जीवन जी सकता है, तो हम कहते हैं कि इसका विकास पूर्ण हो गया, सिंह का विकास पूर्ण हो गया, तो वो अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुका है। उसी तरह से एक बीज है, जब वो उस वृक्ष में बन जाता है तो हम कहते हैं इसका विकास पूर्ण हो गया। अब मनुष्य के साथ समस्या ये आती है कि मनुष्य के लिए आप कहाँ बोलोगे कि वो पूर्ण हो गया। जो बहुत ही जिसको कहें बाहरी चीज में देखते हैं वो केवल कहते हैं कि हाँ शरीर आपका पूर्ण हो गया, तो शरीर डेवलप कर गया, जिसको कहते हैं एडल्ट। अब एडल्ट किसको कहते हैं, 18 साल की उम्र में या 20 साल, यानी आप फिजिकली इक्विप्ड हो। लेकिन हो सकता है कि आप 18 20 की उम्र में भी एडल्ट ना हो, क्योंकि आप इमोशनली इंटेलेक्चुअली इक्विप नहीं होगे। अब अगर वो भी आपने डेवलप कर लिया तो स्पिरिचुअली इक्विप नहीं होगे। तो मनुष्य के साथ पूर्णता की परिभाषा बदलती जाती है जैसे जैसे वो विकसित होता है। यानी कि इसको हम इस तरह से लें कि अगर कोई क्लास, कोई स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है तो लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए उसने हायर सेकेंडरी पास कर ली तो लोग कहते हैं इसकी प्रारंभिक शिक्षा, स्कूल की शिक्षा पूर्ण हो गई। लेकिन क्या शिक्षा पूर्ण हो गई, नहीं। उसके बाद वो मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहा है तो फिर हम लोग ये कहते हैं कि उसके ग्रेजुएशन की शिक्षा पूर्ण हो गई। तो क्या ग्रेजुएशन की शिक्षा पूर्ण हो गई तो पूर्णता आ गई, नहीं। इस तरह से आगे आगे ये पूर्णता अपने आप बढ़ती जाती है। तो मनुष्यों के साथ तीन प्रकार की पूर्णताएं होती हैं। एक जिसको हम कह सकते हैं, या हम उसको केवल दो में करें, मनुष्य की पूर्णता। मनुष्य की पूर्णता में एक और है, उसकी क्षमताओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटीज एंड फैकल्टीज, और दूसरा होता है कि उसमें मानवोचित गुणों का विकास यानी क्वालिटीज का डेवलपमेंट। तो ये दोनों चीज मनुष्य, अगर पूर्ण मनुष्य कौन है, इसीलिए श्री राम को कहा गया ना पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो उनके अंदर हम ये दोनों चीजें देखते हैं, एक और उनके अंदर जो मानवोचित गुण हैं वो किस हाइट तक चले गए, मतलब ये बेंचमार्क है। कई मनुष्यों को अभी भी उस को टच करना मुश्किल होगा, यानी बेसिकली वो मनुष्य की जो सीमा है वो सात्विक सीमा है, उसके परे तो आप एक अलग डायमेंशन में जा रहे हैं। तो सत्व की सीमाओं में जो मनुष्य के जो सात्विक गुण होने चाहिए, हम वो श्री राम में देखते हैं, माता सीता में देखते हैं, तो वो है एक क्वालिटीज के डेवलपमेंट की पूर्णता, जो संभव है। सत्व गुण के अपनी कठिनाइयां हैं, उसमें हम नहीं जा रहे, लेकिन जो एक ह्यूमनली पॉसिबल है उसी तरह से, लेकिन साथ ही हम देखते हैं उनकी कैपेसिटीज, वो एक राजा के रूप में, एक धनुर्धारी के रूप में, इन सब में उनकी अद्भुत कैपेसिटी है, उन्होंने उसको एक चरम सीमा तक डेवलप किया है। तो ये होता है ह्यूमन परफेक्शन। इस परफेक्शन को माता जी ने शब्द जो यूज किया है लोअर परफेक्शन, लोअर परफेक्शन मतलब इस प्रकृति के दायरे में आप कितना विकसित हो सकते हो, वो पूर्णता को कहते हैं लोअर परफेक्शन। लोअर इसको पेजोरेटिव नहीं देखना चाहिए, अरे लोअर मतलब नहीं, लोअर मतलब इस निम्न प्रकृति के दायरे में भी आप किस हद तक जा सकते हैं, तो वो लोअर परफेक्शन। अब ये हमारे देखेंगे कि जितनी भी कहानियां हैं कई पुराने समय की, उसमें ये दिखता है कि कुछ ऐसे राजा हुए, जैसे हरिश्चंद्र को हम देखते हैं, जो जिन्होंने किसी चीज की, किसी कभी कभी किसी एक क्वालिटी की परफेक्शन क्या होती है, तो परफेक्शन के सीकर थे। माता जी कहती हैं अगर कोई पूछे कि श्री अरविंद क्या लेके आए, जैसे अगर लोग कहते हैं श्री अरविंद श्री कृष्ण क्या लाए, तो श्री कृष्ण लाए डिलाइट को, और उन्होंने मार्ग दिखाया कि जीवन में तुम नॉर्मल रहते हुए कैसे तुम फ्रीडम और डिलाइट में जी सकते हो। तो बुद्ध क्या लेके आए, बुद्ध करुणा लेके आए। क्राइस्ट क्या लेके आए, क्राइस्ट एक प्रेम लेकर के आए जो हर चीज को क्षमा कर देता है। तो अब वहां पर श्री राम क्या लाए, श्री राम एक सत्य बुद्धि की पराकाष्ठा लेके आए, इल्यूमेंट माइंड। और श्री अरविंद क्या लाए, तो माँ कहती है ही ब्रॉट परफेक्शन, पूर्णता। अब उसे एक शब्द में सब कुछ है। अब सोचिए अगर हम कहें श्री अरविंद केवल ये सिखाने आए कि पूर्णता का मतलब कि टेबल चेयर आपको कैसे व्यवस्थित रखनी है, तो इट विल बी ए जोक। तो पूर्णता क्या है कि पहले तो मानवोचित विकास, ये लोअर परफेक्शन, ये तो अचीव हो चुका था। तो श्री अरविंद क्या, कौन सी पूर्णता, अब मनुष्य की जो नेक्स्ट है, मनुष्य के अंदर जो बीज है, इसीलिए मनुष्य सदैव एबनॉर्मली रहता है, क्योंकि जब तक वो बीज अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं होता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मैंने अचीव्ड इस परफेक्शन। तो बीज क्या है, दिव्यता का बीज, पशुओं में नहीं है, पशुओं के अंदर उपस्थिति सबके अंदर है, लेकिन वो चैत्य का जो भ्रूण है वो एक रीछ जो होता है, जो भालू बेयर उस तरह के चौपायों से प्रारंभ होता है। तो हम देखते हैं कि भालू में, कभी कभी सिंह में, हाथी के अंदर, घोड़े के अंदर, वो बीच हल्का साम कह सकते हैं, और मनुष्य में वो बीच की डेवलपमेंट प्रारंभ हो जाती है। तो वो बीज दिव्यता का बीज है। तो मनुष्य की वास्तविक पूर्णता तब तक नहीं होती जब तक उसके अंदर दिव्यता की संभावना पूरी तरह ब्लॉसम नहीं हो जाती। तो अब वेदों में इस इवोल्यूशन की बात है कि मनुष्य जो विकास क्रम के दौर में जाता है, इवोल्यूशन, सोल अपने दिव्यता को जब जान लेती है तो हम कह सकते हैं कि वो एक पूर्णता हो गई। ट्रेडिशनल योग में उसी को पूर्णता मान लिया गया, लेकिन शेरविंद बताते नहीं, ये तो एक स्टेप है। यानी पहला क्या था, हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में क्या था कि मानवोचित विकास, उसका ह्यूमन क्वालिटीज, जिसमें नोबिलिटी, जेनरोसिटी, वो सारे जो दैविक गुण हैं जिनकी बात श्री कृष्ण चैप्टर 16 अध्याय 16 भगवद गीता में करते हैं, वो सारे जो दैविक गुणों का विकास हो जाए अगर उसके अंदर, तो वो एक प्रकार का ह्यूमन परफेक्शन है। उसके आगे फिर परफेक्शन क्या है, सोल का परफेक्शन, स्पिरिचुअल परफेक्शन, यानी कि आप अंदर में जो हम पहले चैत्य सत्ता को जाने, वो डेवलप हो, डेवलप हो कि वो विश्व चेतना में प्रवेश करे, विश्व चेतना के बाद वो परात्पर चेतना में को जाने, ट्रांसेंडेंट कॉन्शियसनेस में, ये एक परफेक्शन है, उसको स्पिरिचुअल परफेक्शन बोला गया। और तीसरा जो श्री अरविंद ला रहे हैं कि ये दोनों का मिलन, अब दोनों के मिलन से मानव परफेक्शन, जो मनुष्य की प्रकृति की संभावनाएं गुणों के रूप में और मनुष्य के प्रकृति की संभावनाएं उसकी क्षमताओं के रूप में, दोनों रूपांतरित हो जाती हैं। यहां तक कि वो तीन गुण हैं वो रूपांतरित हो जाते हैं, क्योंकि अब आप हायर और लोअर को मिला रहे हैं। यानी जिस परफेक्शन की बात श्री अरविंद कह रहे हैं वो है एक्चुअली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंटायर फील्ड ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इंटू अ डिवाइन परफेक्शन। आमतौर पर, क्योंकि ये देखने में तो बहुत कठिन कार्य लगता है कि भाई आदमी एक पर फोकस करे या दूसरे पर, तो आमतौर पर ये माना गया, माना जाता रहा कि आप या तो स्पिरिचुअल लाइफ जी सकते हो या मेटेरियल लाइफ। तो ये एक लंबे समय तक ये बात चलती रही, उसका एक अपना एक प्रयोजन था, उसकी बात हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि मनुष्य शायद उसके लिए आवश्यक था कि ये दोनों अलग अलग डेवलप हों। तो मेटेरियल लाइफ जीता था या स्पिरिचुअल। अभी भी लोग पूछते हैं कि हम तो भाई क्या करें, हम मेटेरियल लाइफ जी रहे हैं तो हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच नहीं सकते, अभी भी करते हैं इन स्पाइट ऑफ श्री कृष्णा शोइंग द पाथ। खैर, तो ये दोनों के बीच एक डिवीजन क्रिएट कर दिया गया कि या तो आप मानव जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हो या आप आध्यात्मिक जीवन में जुड़ सकते हो। तो ये एक जो बात है, और उसमें भी आप अगर फिजिकल की बात करें तो इसकी तो सोची भी नहीं गई है। इसीलिए पहले हम एक पैसेज 17 नवंबर का कन्वर्सेशन 57 का, फिर 17 अप्रैल 57 का कन्वर्सेशन, उसके बाद 24 अप्रैल का कन्वर्सेशन पढ़ेंगे। तो 17 अप्रैल के कन्वर्सेशन में माँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहती हैं। जब उन्होंने शुरू किया था यहाँ प्लेग्राउंड एक्टिविटी शुरू हुई तो बहुत लोगों को बड़ी परेशानी हुई, उनको लगा कि शायद मार्ग भटक गए हैं हम लोग। सोचिए ऐसे दिग्गज लोग होंगे, माँ ने शुरू किया, इनिशिएट किया, पर उनको लगा अरे वो माँ थोड़ा कहे में आ गई, अब वो फिजिकल एजुकेशन पे इतना ध्यान दे रही हैं। यहाँ तक कि लोगों ने श्री अरविंद को पत्र लिखे कि हम लोग लगता है स्पिरिचुअल लाइफ से दूर जा रहे हैं। श्री अरविंद समझा रहे हैं, पत्र हैं उनके, एसेज हैं जिसमें वो बताते हैं फिजिकल एजुकेशन क्यों जरूरी है इस आश्रम में या योग आश्रम में। वो एक पूरा सुपरमेंटल मैनिफेस्टेशन में है और उसी को माँ पढ़ती हैं। फिर यहाँ पर उसी संदर्भ में कहती हैं कि बाद में उन्होंने जब कलेक्टिव मेडिटेशन प्लेग्राउंड में शुरू किया, तो प्लेग्राउंड में कलेक्टिव मेडिटेशन पहले नहीं होता था, कंसंट्रेशन होता था, फिर जो एक्टिविटीज होती फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता था, माँ बादाम या कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करती थी। फिर जब माँ ने कलेक्टिव मेडिटेशन शुरू किया, वो कब शुरू हुआ, 56 के बाद, क्योंकि अब आवश्यकता पड़ी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की, वो एक अलग विषय है, उसकी हम लोग पढ़ेंगे उसको जब आएगा। तो जब कलेक्टिव मेडिटेशन शुरू हुआ तो लोगों ने क्या रिमार्क किया, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यह है पेज 88। एंड ही गोज ऑन टू से, श्री अरविंदो गोज ऑन टू से, और माँ कहती इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले हफ्ते, वी विल रीड दैट टुडे। फर्स्ट वन हैज टू फाइट अगेंस्ट ए फॉर्मिडेबल मास ऑफ स्टूपिड प्रेजुडिसेस विच क्रिएट एन इरिकंसिलेबल एंटागोनिज्म बिटवीन मटीरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ। अब तो सैटरडे को तो पिक्चर भी दिखाई जाती थी आश्रम में, तो लोगों को इससे भी अजीब लगा कि पिक्चर क्यों दिखा रहे। अब लोग ये समझते रहे माँ का किसी इज गिविंग ए कंसेशन, लेकिन माँ तो कोई भी काम ऐसे नहीं करेंगी, केवल शी विल नॉट गिव अ कंसेशन टू ह्यूमन नेचर दिस वे। आश्रम के ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, व्यक्ति के जीवन में यस बहुत लंबी रोप दी उन्होंने, पर आश्रम की लाइफ वो कंसेशन के रूप में नहीं ऑर्गेनाइज करेंगी कि ओके। तो उसके पीछे कारण है, माँ कहती हैं इट इज समथिंग सो डीप रूटेड इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इरेडिकेट इट इवन इन दोज हु थिंक दे हैव अंडरस्टूड श्री अरविंदोज टीचिंग। वे लोग भी जो समझते हैं कि हम जानते हैं श्री अरविंदो की राइटिंग को, हमने पढ़ लिया है, उनके अंदर भी ये बीमारी है। और ये बीमारी के बारे में माँ बताती हैं, एंड मैनी पीपल सेड व्हेन फॉर ऑल टुगेदर डिफरेंट रीजंस आई बिगैन टू होल्ड मेडिटेशंस अगेन। वो डिफरेंट रीजंस हैं, बिकॉज पहले साधना इंडिविजुअल थी, उसको कलेक्टिव बनाने की जो माने 56 के बाद शुरू की, वो कारण वो बाद में बताती हैं, यहाँ कह रही बिल्कुल अलग रीजन से। लेकिन लोगों ने क्या समझा, लोगों ने कहा आह एट लास्ट वी आर रिटर्निंग टू स्पिरिचुअल लाइफ। लोगों को लगा अच्छा आह चलो मेडिटेशन शुरू हो गया, हम वापस आध्यात्मिक जीवन की ओर जा रहे हैं। This was indeed what prevented me from holding them for a long time. It was in order not to encourage this stupidity. माँ कहती मैं तो बहुत पहले ही collective meditation शुरू करती, लेकिन मैं नहीं कर रही थी क्योंकि लोग immediately समझेंगे हाँ आप माँ ने sanction दे दिया spiritual life के लिए। अब ये तो सोच है मनुष्य की। खैर, बट फॉर अदर reasons, इट was necessary टू डू इट एंड सो आई डिड. सो लॉन्ग एज दिस foolishness इज नॉट uprooted फ्रॉम ह्यूमन consciousness, द supramental फोर्स विल ऑलवेज फाइंड इट considerably difficult not to be engulfed in the obscurity of a human thought which understands nothing. वही सन्यास की प्रवृत्ति, वही सन्यास की आत्मा जीवित हो जाती है. जैसी आश्रम की बात होती है इमीडिएटली लगता है कि भाई ये तो सन्यास में चले गए. अब अगला कन्वर्सेशन 24 अप्रैल 57 का. अब श्री अरविंद स्पिरिचुअल इसमें सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन की बात हो रही थी, उसमें एक लंबा पैसेज है. अब उसमें हम लोग नहीं पढ़े, वो बहुत लंबा पैसेज है, लेकिन यहाँ माँ से किसी ने प्रश्न किया है, लेकिन अंतिम लाइन पढ़ लेते हैं हम लोग. श्री अरविंद की वाणी है सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन, ये उनकी अंतिम डॉक्यूमेंट है. 49 में ये लिखे गए एसेज है. और क्यों लिखे गए थे? क्योंकि सबके अंदर ये बीमारी आ रही थी कि अरे प्लेग्राउंड. ये नहीं उन्होंने कहा कि प्लेग्राउंड जाना ही स्पिरिचुअल लाइफ, ये भी दूसरे लोगों ने इस तरह से समझ लिया, लेकिन उन्होंने लोगों को नहीं समझाया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है. तो वहां पर श्री अरविंद ने ये आर्टिकल्स लिखे थे, और उसमें श्री अरविंद कहते हैं, हियर देयर कम्स इन द नेसेसिटी ऑफ टेकिंग अप द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सबलिमेटिंग दैम बाई द पावर ऑफ द स्पिरिट. हर एक एक्टिविटी, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा इंक्लूडिंग द मोस्ट चैलेंजिंग फील्ड ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, एवरी एक्टिविटी. इस पर तो नलिदा का एक पूरा ऐसे है. तो वो पूरी एक्टिविटीज को आप धीरे धीरे माने लेना शुरू किया, वो पहले नहीं था. अब उन्हीं में फिजिकल एजुकेशन की बात आती है. तो माँ कहती हैं, हियर द लोअर परफेक्शन विल नॉट डिसअपियर, इट विल रिमेन बट विल बी एनलार्ज एंड ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हायर परफेक्शन विच ओनली द पावर ऑफ द स्पिरिट कैन गिव. सावित्री में इसको एक लाइन में श्री अरविंद समराइज करते हैं, लास्ट में एपिलोग में. तो वो लाइन है, कहती है सावित्री, हेवेंस टच फुलफिल्स बट कैंसिल्स नॉट अवर अर्थ्स. क्योंकि सत्यवान ये पूछता है, कहता है तुमको देख के तो वो तो नींद से जागता है ना, उसको पता नहीं है मौत के मुंह से छीन के लाई है सावित्री. वो कहता है कि ये मैं क्या देख रहा हूं, तुम तो अब तो तुम मेरी वाली सावित्री नहीं लग रही हो, देवी लग रही हो, देवी से भी परे. तो अब तो मैं परेशान हो गया हूं कि तुम मुझे छोड़ के जाने वाली. उसके मन में जो भी आशंकाएं आ रही है कहता नहीं है, लेकिन उसके मन में वो कहता है कि मेरे को अच्छा लगेगा कि अगर तुम अभी भी वही हो. तो सावित्री कहती है, आई एम स्टिल द सेम. वो डिस्क्राइब करती है कि मैं तुम्हारी वाइफ भी हूँ, सिस्टर भी हूँ, ये सारी चीजें वो बताती हैं. तो उसके बाद वो कहती हैं कि वी आर स्टिल द सेम टू ईच अदर अनटिल द लास्ट. फिर वो कहती हैं ये सूत्र, हेवेंस टच फुलफिल्स बट कैंसल्स नॉट अवर अर्थ. फुलफिल करता है. अब प्रश्न करते हैं कोई, स्वीट मदर, हियर शिवरबिंद स्पीक्स ऑफ द हायर परफेक्शन एंड द लोअर परफेक्शन. कि हायर परफेक्शन से लोअर परफेक्शन फुलफिल होता है, रूपांतरित होता है, वो कैंसिल नहीं होता है. ये नहीं होता कि अब तुम स्पिरिचुअल लाइफ लीड कर रहे हो तो ये सारी चीजें कैंसिल हो गई. निषेध क्या है? निषेध वो सब है जो इन चीजों को डिस्टॉर्ट करता है. निषेध क्या है? काम, क्रोध, लोभ, भय, मोह, मद, मत्सर, ये लिस्ट भी अच्छी खासी है. लेकिन जब इनको हटा देते हैं तो ये थोड़ी है कि मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, मानो यही चीजें मनुष्य हैं. कई लोगों की ये बड़ी समस्या होती है, अगर यही चीजें चली जाएंगी तो हम क्या रहेंगे, तब आप और निकल के आओगे, ये तो धूल मिट्टी है. ये चीजें जब जाएंगी तो वास्तव में यू विल बिकम ट्रूली ह्यूमन इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड, नॉट डिवाइन. ये तो क्लेंसिंग है, प्योरिफिकेशन है, शुद्धि है जो आपको मुक्त करेगी. अब छोटी सी चीज है, ह्यूमन रिलेशनशिप में है, जेलसी है, तो ये कौन सी कोई इंडिस्पेंसिबल है कि होनी चाहिए? और अगर इसको हटा दो तो क्या मानव प्रेम कम हो जाता है या बढ़ जाता है? बड़ी सिंपल सी चीज है. तो इवन ह्यूमन लेवल की बात है, तो इनको तो हटाना है। इसको कहते हैं बैंड ऑफ स्पिरिट्स एनिमी, क्योंकि इससे तुम्हें पीड़ा हो रही है। औरों को तो पीड़ा बाद में दे रहे हो, तुम स्वयं को पीड़ा दे रहे हो। लेकिन इसका क्या मतलब है कि मानव प्रेम समाप्त हो जाएगा? नहीं। तो यहां पर श्री अरविंद और बहुत कुछ बताते हैं इसमें, लेकिन हम लोग यहां पर वापस आ जाएं कि द हायर परफेक्शन इज द स्पिरिचुअल परफेक्शन, इंटेग्रल यूनियन विद द डिवाइन। केवल हमारे सोल की यूनियन नहीं, इंटेग्रल यूनियन, हमारे मन की भी भगवान के साथ एक हो जाए, सो दैट ये ह्यूमन माइंड है वो दिव्य मन में रूपांतरित हो जाए, हमारा हृदय भगवान के साथ एक हो जाए, जिससे कि ये मानव हृदय दिव्य प्रेम का पात्र बन सके। इसलिए ये सब हटाना है, क्योंकि अगर वो नहीं हटेगा, एक नैरो चैनल रहेगा, तो दिव्य प्रेम कहां से आएगा? तो भगवान कहते पहले कम से कम एक अच्छे मनुष्य की तरह तो रह लो। हमारा जो मानव प्राण है, मानव जीवन है, इसमें से जो इसकी बहुत सारी चीजें जो अहंकार कामनाओं के कारण है, तो उसको हटाएंगे तब ये क्या बनेगा, ये मानव प्राण दिव्य प्राण से उत्प्रोत हो जाएगा और वही चीज देह के ऊपर लागू होती। तो इंटेग्रल यूनियन, आइडेंटिफिकेशन विद द डिवाइन, और इस आइडेंटिफिकेशन का क्या उसके कारण क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, क्या मिलता है उससे? फ्रीडम फ्रॉम ऑल द लिमिटेशंस ऑफ द लोअर वर्ल्ड, जिसमें अल्टीमेटली फ्रीडम फ्रॉम द लॉ ऑफ कर्मा है। कर्म बंधन क्या है? जब तक हम सीमित हैं डूअर के भाव से, इगोइज्म के साथ कर्म कर रहे हैं, किसी भी सेल्फिश गेन के लिए कर्म कर रहे हैं, तो आप कर्म बंधन में रहेंगे। ये बंधन वास्तव में क्या बंधन है? आपका ही बंधन है। तो कर्म बंधन तो केवल हमको बताने आता है कि देखो तुम बंधन में हो, लेकिन जिस दिन व्यक्ति भगवान के साथ एक हो जाता है, ये बंधन छूट जाता है, क्योंकि ये तो बंधन वास्तव में अज्ञान का बंधन है, जिसको हम कर्म बंधन कहते हैं। तो जैसे ही वो, तभी तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अहम तो असर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा सुचा, तो वो फिर मुक्त जीवन होता है। दिस इज दैट इज स्पिरिचुअल परफेक्शन, द परफेक्शन दैट कम्स फ्रॉम योगा, क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द बॉडी एंड द फिजिकल वर्ल्ड, विच इन एंशियंट टाइम्स मेंट फर्स्ट रिजेक्टिंग द बॉडी एंड द फिजिकल लाइफ सो एज टू हैव अ रिलेशन ओनली विद द हायर वर्ल्ड एंड फाइनली विद द डिवाइन। दिस इज दैट इज द हायर परफेक्शन। तो लोअर परफेक्शन क्या है? एंड द लोअर परफेक्शन इज टू बी एबल टू मेक द ह्यूमन बींग इन इज प्रेजेंट फॉर्म एंड इन इज बॉडी इन इज रिलेशन विद ऑल टेरेस्ट्रियल थिंग्स डू द अटमोस्ट ही कैन। तो मन दिव्य मन से जुड़ेगा या हार्ट डिवाइन लव से जुड़ेगा, उसके पहले आप इसको, जो बात हुई ना, इसकी गंदगी को हटाएंगे, इसको विशाल बनाएंगे, मन को विशाल, ये ह्यूमन लेवल पर ही आप कर सकते हैं। कोर्ट भगवान का स्पर्श भी करेगा, जैसे भी दोनों भी, बट इट हैज टू बी डन। तो वो लोअर परफेक्शन क्या है? यहां जो हमारी संभावनाएं हैं मानवीय स्तर पे, उनको, उनका विस्तार। तो अब मां बता रही, दिस इज द केस ऑफ ऑल ग्रेट मैन ऑफ जीनियस, आर्टिस्टिक जीनियस, लिटररी जीनियस, जीनियस इन ऑर्गेनाइजेशन, द ग्रेट रूलर्स, दोज हु हैव कैरीड फिजिकल कैपेसिटीज टू देयर मैक्सिमम परफेक्शन, ह्यूमन डेवलपमेंट टू द लिमिट ऑफ इट्स पॉसिबिलिटीज, एंड फॉर इंस्टेंस ऑल दोज हु हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर देयर बॉडीज एंड सक्सीड इन डूइंग मिरेकुलस थिंग्स एज वी सॉ फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द वॉर। देखो मां बताए, युद्ध के समय लोग खाए पिए बिना, निद्रा के बिना, जहां मृत्यु का तांडव हो रहा है वहां पर वो कैसे डट के बैठे रहते हैं, ये भी एक परफेक्शन है, लोअर परफेक्शन है। इसीलिए सारे अनुभव आते हैं, चैलेंज करते हैं हम लोगों को, ताकि हमारे अंदर मानवीय संभावनाएं भी बढ़े। श्री अरविंद यही जब आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं तो वो राममूर्ति की बात एक जगह करते हैं, नाम सुना होगा शायद लोगों ने राममूर्ति का, राममूर्ति इंडिया के एक रेसलर थे, तो ये बाद में जो सारे गामा और गामा उनका चेला था, उसके बाद दारा सिंह से लोग परिचित हैं। तो राममूर्ति के बारे में कहा जाता है कि उसको एक्चुअली कलयुग का भीम टाइटल दिया गया था, और उसने तो ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज किया था कि मैं खड़ा रहूँगा, तुम तूफान मिल को फुल स्पीड से लाना, और मैं केवल यू टाइम ही विथ चेंज, ताकि मैं भाग ना सकूँ, और मैं केवल देह बल से उसको रोक दूंगा, और यदि मैं रोक दूंगा तो आपको इंडिया को फ्रीडम देनी पड़ेगी, देशभक्त था। वो मान के फिर घबरा गए, उन्होंने कैंसिल कर दिया। कि ये रोक सकता है। अब सोचिए क्या कॉन्फिडेंस है उसका। और एक कहानी जो है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसको स्पेन में भी एक टाइटल मिला था जो मैं भूल रहा हूँ, शायद उसी के बाद लोगों ने भारत में उसको कलयुग का भीम कहना शुरू किया था। स्पेन में क्या टाइटल मिला था मैं भूल रहा हूँ। तो वहाँ पर उसको लोगों ने कहा कि बुल फाइट में तुम भी भाग लो, इतने सारे एक से एक दिग्गज बुल फाइट वहाँ होती है ना, आपको किसी भी तरह उसको पकड़ना है। तो इसने कहा नहीं, इसके अंदर बड़ी सुंदर एक दीवाज लाइक ए स्पिरिचुअल पर्सन, बहुत विनम्र व्यक्ति, प्योर वेजिटेरियन, मतलब ही इज एक्सेप्शन नोन फॉर दिस। तो वो लोगों ने बड़ा इंसिस्ट किया, नहीं नहीं, फिर कहा भारत के ऊपर नहीं तो लोग कहेंगे देखो भारतीय डर गया भाग गया। तो चुपचाप मॉडेस्टली वो एरेना में चला गया। ये डॉक्यूमेंटेड स्टोरी है। जो बुल आती है उसके तरफ राममूर्ति चुपचाप खड़ा रहता है, जैसी आती है सिंहों को पकड़ के पटक देता है, एक क्षण नहीं लगता है उसको। ये डॉक्यूमेंटेड स्टोरी है, कुछ नहीं करता है वो, बस सिंहों को पकड़ के उसको पटक देता है। फिर उसको बुरा लगता है कि अरे उसको चोट पहुंची होगी। तो इसकी बात श्री अरविंद करते हैं। ऐसी जब कोई आता था यहां पे, ऐसे भी जीनियस आए जैसे दिलीप कुमार रॉय अपने आप में एक जीनियस थे, इनायत खान जिन्होंने आकर के म्यूजिक, और श्री अरविंद ने उसको काफी अप्रिशिएट किया, मिस्टिक भी थे माने का, लेकिन ये रेयर चीज है। परंतु ये ना केवल निषेध नहीं है, ये बहुत सुंदर है अगर ये हो। अब देखिए इसीलिए क्या कहती है गीता में अंत में संजय, जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां पार्थ धनुर्धर। अब पार्थ धनुर्धर की क्या ब्यूटी है, अब देखिए उन्होंने क्या मास्टरी की हुई है अपनी आर्चरी पर। वो ऐसे तो मास्टरी नहीं की जाती ना, वही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो अंधकार में देख सकते थे, क्योंकि जब उन्होंने सारे सब लोग तो वही सीख रहे हैं ना, ब्रह्मास्त्र भी सीख रहे हैं, अश्वत्थामा को सिखाई दिया, तो इन्होंने कहा मैं क्या करूं जो मुझे अलग बनाए। इन्होंने रात को नींद पर काबू पाके, इसीलिए अर्जुन का एक नाम यह भी है, जहां वो निद्रा पे विजय प्राप्त करके उन्होंने अंधेरे में तीर चलाना शुरू किया। शब्द वेदी वाण तो लोग चलाते थे लेकिन अंधेरे में बैंग ऑन टारगेट, ये अर्जुन की महारत थी। इसीलिए जब घटोत्कच का वध होता है या अभिमन्यु की, उसके बाद ये अंधकार में, बिकॉज दे अटैक्ड इन द नाइट, सो उस समय अर्जुन जाते हैं कि आई कैन डेसिमेट देम, अंधकार में मैं तीर चला सकता हूँ। तो ये कैपेसिटी का डेवलप, तब ये ब्यूटी होती है। ऐसे नहीं कि भगवान किसी को अस्वीकार करते हैं, उनके चरणों में तो कली भी गिर गई तो फूल तो खिला ही देंगे, लेकिन वो एक बात है। लेकिन जब आप पूर्ण विकसित होके, यहां पर इसीलिए माँ बता रही हैं, एंड फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, ऑफ इंटेलेक्चुअल रियलाइजेशन, ऑफ द फिजिकल क्वालिटीज ऑफ एनर्जी एंड करेज, ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस, गुडनेस, चैरिटी, ऑल ह्यूमन क्वालिटीज कैरिड टू देयर एटमोस्ट लिमिट्स। इसलिए वार की फिल्म देख करके आपको कितना उसमें एक ह्यूमन परफेक्शन की चीज होती है ना, जहाँ कोई सोल्जर अगर गिर गया, ये युद्ध के नियम है, भारत में तो हैं, पाकिस्तान में तो छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन भारत में ये अगर कोई गिर गया तो बॉडी को छोड़ के नहीं जाएगा, वो अपने मतलब लाइफ को रिस्क करके उसके शरीर को लेकर के आएगा। फिल्में भी बनी है इस पर, ये रियल स्टोरीज हैं कि वो उसको छोड़ के नहीं जाए। आप देखिए ये कोई साधारण चीज है, असाधारण है। हो सकता है वो व्यक्ति भगवान में माने या ना माने, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एट ए ह्यूमन लेवल ही स्टैंड्स वेरी हाई। ये तो लोअर परफेक्शन। द हायर परफेक्शन इज स्पिरिचुअल एंड सुपर ह्यूमन। द लोअर परफेक्शन इज ह्यूमन परफेक्शन कैरिड टू इट्स मैक्सिमम लिमिट्स, एंड दिस में बी क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ और स्पिरिचुअल एस्पिरेशन। ये संभव है कि उस व्यक्ति के अंदर कोई भगवान में विश्वास ना हो। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन भगवान की का कर्म, वो एक सीमित उसमें नहीं है कि हम जैसे समझते हैं कि भगवान को मानता है कि नहीं मानता है। हो सकता है कि वो ना मानता हो, ऐसे लोग रहे हैं। इवन भगत सिंह जिनकी बात करते हैं, वो ही डिडंट बिलीव इन गॉड, लेकिन सोचिए मृत्यु के पहले वहीं पर रामप्रसाद बिस्मिल, वो देखिए दोनों के डिफरेंस, दोनों ही अपने आप में ग्रेट सेक्रीफाइस करने वाले राष्ट्र के लिए, ऐसे तो नहीं कर सकता है कोई। तो जब रामप्रसाद बिस्मिल से पूछा जाता है कि क्या चाहिए, मृत्यु होने वाली है, तो भगवत गीता, यूज टू रीड भगवत गीता इन द प्रिजन। और जब इनसे भगत सिंह से पूछा जाता है कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तो वो लेनिन की पुस्तक मंगाते हैं, ही डिडंट बिलीव इन गॉड। पर क्या इसके कारण हम उस सेक्रीफाइस को कम कर सकते हैं? सो यहां पर हमको ये समझना है कि ये हमारी जो कंसेप्शन है ना, बुद्धि, बहुत सीमित दायरे में काम करती है, भगवान ऐसे नहीं देखते हैं। चर्चिल को उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बना लिया, नेपोलियन बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट। तो ये यहां पर माँ हमें बता रही हैं, वन कैन बी अ जीनियस विदाउट हैविंग एनी स्पिरिचुअल एस्पिरेशन। कई लोगों में ये, अब जिस नेपोलियन की बात हो रही है, ये नो स्पिरिचुअल एस्पिरेशन, बट येट ही वॉज विभूति। वन कैन हैव ऑल द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेंटल क्वालिटीज विदाउट हैविंग एनी स्पिरिचुअल लाइफ, एंड इवन यूजुअली दोज हु हैव अ वेरी ग्रेट पावर ऑफ ह्यूमन रियलाइजेशन आर सेटिस्फाइड विद देयर कंडीशन। अब यहां बस ये समस्या आती है कि इन लोगों के अंदर स्पिरिचुअल एस्पिरेशन जगाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि उनको लगता है हम तो अचीव्ड हैं। मिला हूं मैं कई बार, कभी कभी ऐसे लोगों से, एक बार पूरी एक नेशनल काउंसिल बनाई गई थी एक समय, किस सज्जन ने बनाई थी, उसमें सारे जो चुन चुन के इधर उधर के जो इंडिया के उस समय थे, कोई डांसर कोई आर्टिस्ट, उनको बुला करके एक कमेटी बनाई गई थी जो भारत के उस पर विचार करेंगे आगे। तो उसमें उन्होंने मुझे भी शामिल किया था, पर मुझे इसलिए नहीं कि कुछ, वो श्री अरविंदो का एक टच देने के लिए। अब मैंने देखा उसमें जो आ रहे सब एक से, क्या भाई आनंद शंकर आएंगे, वो अपना एकदम फ्लैम्बॉयंट ड्रेस में, कोई दूसरी डांसर, अब मैं नाम नहीं लूंगा, तो आकर के दे आर ऑल कमिंग लाइक, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है शोरबिंदो में या उसमें, बट दे आर इन देयर ओन फील्ड। मतलब इट वाज लाइक ए गैलेक्सी ऑफ लिटिल स्टार्स, अपने टाइम से आ रहे हैं, अपने फ्लैम्बॉयंट तरीके से वो एक दो बातें कह के। तो मैंने से कहा इनको क्यों आप इंक्लूड कर रहे हो इस कमिटी में, उसके बाद वो डिसॉल्व हो गई। लेकिन कहने का मतलब कि उनके अंदर जनरली वो भगवान को अगर मानते भी हैं तो इट्स लाइक जय बाबा जी, कुछ एक हैं जैसे पंडित जसराज, उनके अंदर ये चीज थी, वो कृष्ण भक्त थे, जेन्युइनली थे। पर अगर भीमसेन जोशी की बात करें तो दारू वारू पीना सब, मतलब उनका अलग ही एक नज़ारा था, बट ही वॉज ए ग्रेट, वेरी ग्रेट वॉइस। आप ये नहीं कह सकते कि उनमें कोई कमी है, ये दोनों टक्कर के हैं। तो यहां पर माँ एक चीज स्पष्ट कर रही हैं, लेकिन उनको क्या लगता है कि दे फील दे आर सेल्फ सफिशियंट। इट इज डिफिकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड एंड फील दैट दे आर नॉट द क्रिएटर्स ऑफ देयर ओन क्रिएशंस। ये उनको पसंद नहीं आता है कि आप जो हो भगवान की मर्जी से हो, ये बड़ी कठिनाई होती है। अरे हमारा कुछ तो क्रेडिट दे दो। ऐसे ही डॉक्टर्स के साथ होता है, जो बड़े वो 30 बचा खां जो भी है, तो उनको लगता है हम तो जीवन देने वाले हैं, भगवान हमसे बड़ा भगवान क्या है। तो उनके लिए बड़ा कठिन होता है भगवान की ओर मुड़ना, मतलब मुड़ते भी हैं तो एक नॉर्मल रिलीजियस सेंस में। फिर माँ कहती, इट इज नॉट एसेंशियली ट्रू बट दिस इज यूजुअली हाउ थिंग्स हैपन। अब इसका सबसे बड़ा जो कॉन्ट्राडिक्शन उदाहरण है, जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों परफेक्शन का, वो स्वयं सीमा श्री अरविंद है। श्री अरविंद महाकाव्य का भी महाकाव्य, सावित्री, अगर केवल उन्होंने एक ग्रंथ लिखा होता सावित्री, तो आप उनको ह्यूमनली आप एक विभूति या हाइएस्ट स्टैंडर्ड्स में रख सकते हैं। बाकी तो आप छोड़ ही दीजिए, उन्होंने पूरी संस्कृत के लिए एक नया द्वार खोला है, वेदों का नया इंटरप्रिटेशन किया है, भाष्य लिखे हैं। बाकी उनकी अकल्ट उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्पिरिचुअल परफेक्शन तो उन्होंने किया ही किया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और भारत की स्वतंत्रता के लिए इंटरवीन किया हर लेवल पे। उसी तरह जब आप माता जी को देखते हैं तो माता जी तो बहुत मॉडेस्ट हैं, कोई ये बताता नहीं है माता जी के बारे में। उनकी पेंटिंग्स ल्यूब में डिस्प्ले हुई, अब ल्यूब में आपकी पेंटिंग डिस्प्ले हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड का जो चित्रकारी का जो सबसे फेमस है स्थान है, लेकिन माँ कभी ये नहीं कहती हैं। जब कोई उनकी पेंटिंग्स कुछ एक लाना चाहता था तो माने का माई चाइल्ड वी लिव इन इटर्निटी, अटैच नहीं उससे। उनका ऑर्गन म्यूजिक उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा, मालूम है मैं क्या करती हूँ, कोई पूछता है तो कैजुअली मेंशन कर देती हैं, बट लुक एट इट, बिल्कुल अगर प्रकृति के सत्य से कोई संगीत चलता है तो वो माँ का म्यूजिक है। और उसका कारण ये है कि बाकी सब मन से बांधते हैं, सारे गामा। अब आप देखिए सामवेद में क्या था, सामवेद में सारे गामा नहीं है, लेकिन क्या वो म्यूजिक कम है? साम तो पड़ा ही है, बिकॉज इट्स, वो गाते थे उद्गीत, और कैसे गाते थे ये बड़ा आश्चर्य है। बाद में आए ये ताल, वो केवल तीन चीज जानते थे, हाई, मध्यम और लो, बस। और उससे जो अगर आप कभी सुनोगे सामवेद का उद्गीत, अमेजिंग उसकी इफेक्ट होती है। माँ के म्यूजिक में भी आप देखोगे कि राइजिंग टू ए क्रेसेंडो, कमिंग टू समथिंग मिडिल एंड देन गोइंग डाउन एंड ग्रेजुअली मेल्टिंग। अब वो कहती नहीं है कि अरे मैं तो सुर ताल के परे हूं, कुछ नहीं कहती। लिसन टू मदर्स म्यूजिक, कोई आप मेंटल रोल में वो नहीं बंधाया वो म्यूजिक, इसलिए लोगों को समस्या होती है कई बार। पेंटिंग, उसकी तो बात हो ही चुकी। ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी, मतलब अगर कोई देखे केवल, इट इज अमेजिंग कि कैसे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया 2000 लोग जो एक, मतलब अलग अलग, इतना ये आश्रम हेट्रोजीनस है, हर तरह के लोग, उनको संभाल के रखने ही बहुत बड़ी बात है, उनके खाने पीने रहने, और ये ऑल लाइफ इज योगा वाला योग, ये नहीं कि केवल एक भोजन भंडार खोल दिया, उसको व्यवस्था करना, मतलब अगर आप देखें केवल ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी, इस पर कोई मैनेजरियल मैनेजमेंट कैपेसिटी, इट्स अमेजिंग, शी इज ए जीनियस। लेकिन जहां स्पिरिचुअलिटी की बात होती है तो वो पता नहीं निर्गुण सगुण के परे, अक्रिय सक्रिय ब्रह्म के परे वो जब बातें करती है तो लगता है। इवन फिलॉसफी, माँ एक बार संकोच से कहती हैं नलनीदा को, कि नलनीदा कहते हैं कि एक बार माँ ने मुझे कहा, यू नो एट वन टाइम आई ऑल्सो यूज टू बी इंटरेस्टेड इन इंटेलेक्चुअल फिलॉसफी। वो उन्होंने लिखी है कॉस्मिक फिलॉसफी, वो तो सब चली गई है, हाँ अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, वो विलुप्त हो गई, वो फिलॉसफी है कॉस्मिक फिलॉसफी, उसमें उन्होंने हाईएस्ट सिंथेसिस क्रिएट की थी, और वही लिखती थी, कोई उसमें नाम है कि नहीं। पर नलनीदा कहते हैं उन्होंने मुझे इसलिए कहा ताकि मेरे अंदर इंटेलेक्ट का अभिमान ना आ जाए। माँ का जो इंटेलेक्चुअल साइड है, और जैसे वो खेल खेल में ऐसे इट्स अमेजिंग, जब कोई आप ऐसे से क्वेश्चन, पुरुष प्रकृति होने प्योर, इवन जो भारतीय उसके हैं ट्रेडिशन स्पिरिचुअल नॉलेज से जुड़े हैं, हाउ शी सेज, क्योंकि वो एक अलग परफेक्शन है, और दोनों को उन्होंने कंबाइन किया हुआ था। अब आगे वो बताती हैं, ओनली दोज हु आर प्रीडेस्टाइंड कैन कंबाइन दीज टू परफेक्शंस एंड रियलाइज समथिंग इंटेग्रल। अब वो एक रेयर चीज है, यत्र पार्थ धनुर्धरा यत्र योगेश्वर कृष्णा, ये कॉम्बिनेशन जो है एक ही व्यक्ति में, ये बड़ी रेयर चीज है। श्री कृष्ण में भी हम ये देखते हैं, ये परफेक्शन, बांसुरी बजाते हैं तो क्या बांसुरी बजाते हैं और जब चक्र चलाते हैं या अपनी गदा चलाते हैं तो ये अद्भुत है, या जब राज्य करते हैं तो दिस इज वॉट इज रियल इंडिया। और बार बार में ये है भारत की रियल पहचान, वो नहीं जो बाद में हम, मैं नाम नहीं लूंगा, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, जो मोक्षवादी धारा आ गई, ये मेटीरियल लाइफ है, वो स्पिरिचुअल लाइफ है। इसने भारत को एकदम, योगी थे श्री कृष्ण, योग योगेश्वर हैं, लेकिन कोई योद्धा उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है, दैट इज डबल परफेक्शन। अब उसमें अब किस लेवल तक आप जाएंगे, अब श्री अरविंद उसको सुप्रामेंटल तक ले जाते हैं, इसीलिए वो एकदम एबिस और फिजिकल परफेक्शन की बात करते हैं, पर जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन। द ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर्स हैव वेरी रेयरली बीन ग्रेट रियलाइजर्स इन द फिजिकल वर्ल्ड, ये सच है, कुछ एक हुए हैं जो रेयर। इट हैज हैपेंड बट इट इज वेरी रेयर, ओनली दोज हु आर कॉन्शियस इनकारनेशंस ऑफ द डिवाइन नेचुरली कैरी इन देमसेल्व्स द पॉसिबिलिटी ऑफ द टू परफेक्शंस, बट दिस इज एक्सेप्शनल। कॉन्शियस इनकारनेशंस, यहाँ या तो अवतार या विभूति, जो विभूति होते हैं उनके अंदर ये कॉम्बिनेशन, उनके भगवान ही ऐसे गढ़ करके भेजते हैं कि उनके अंदर दोनों ह्यूमन लेवल पे कैपेसिटी होगी जो उनको कृत्य करना है, और डिवाइन के अंदर के लेवल पे जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा है, जिस लेवल की परफेक्शन, वो दोनों होगी। आई बिलीव दिस दैट इज वन ऑफ द थिंग्स श्री अरबिंदो इज गोइंग टू एक्सप्लेन, व्हाई इट इज नेसेसरी टू गिव टू द फिजिकल एक्सटर्नल बीइंग इट्स फुल डेवलपमेंट. और अगर आप देखेंगे ये ग्रीक्स में और पुराने भारतवर्ष में इवन शरीर के सौंदर्य बोध की, यहाँ पे टेबल टेनिस या कंपटीशन के बाद टेबल टेनिस टेनिस कंपटीशन, इसका तो मुझे पता है, एथलेटिक्स सर्टिफिकेट एक माँ देती थी, माँ के सिग्नेचर होते थे उस पर, और उसमें लिखती थी कि फला फला ने इसमें फर्स्ट आया सेकंड आया, पर उसके ऊपर जो एक छवि होती थी, एक ड्राइंग होती थी, आप उसको, इट इज़ ए पर्सन जो केवल उसका शरीर है, निर्वस्त्र है, वो बैठा है, लेकिन वो अद्भुत है, उस शरीर का अपना एक सौंदर्य है. मतलब इट इज ए इंस्पिरेशन कि शरीर के अंदर सौंदर्य कैसा होता है. आई कैन शो यू. सो वो व्हाट इट इज टू हैव दैट काइंड ऑफ इवन फिजिकल लेवल पर. मैंने तो कुछ एक देखे हैं, ये सालारजंग म्यूजियम में है आपने, वहाँ कुछ एक ग्रीक उसकी बनी हुई, इवन रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में आई हैव सीन. और वो हाँ एचलिस का और अलग अलग उसके जो उनकी संगमरमर की मूर्ति है, मूर्ति क्या वो मैंने बनाई गई आर्किटेक्चर से, और जो शरीर का गठन है, मतलब वो देख के आनंद आ जाता है. इट इज़ नॉट अबाउट मस्कुलर बॉडी, इट्स अबाउट ए फॉर्म विच इज हारमोनियस एंड ब्यूटिफुल इन प्रपोर्शन, जिसके अंदर शक्ति और सौंदर्य और बैलेंस सामंजस्य सब है. तो ये दोनों जरूरी हैं. सौंदर्य से इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि बाहर मेकअप कर लिया, बाल काले कर लिए, कपड़े ऐसे पहन लिए, दैट इज नॉट ब्यूटी. बट सौंदर्य यानी शरीर का समुचित विकास, जिस पर भारतवर्ष में एक समय ध्यान दिया जाता था. तो यहां माँ उसी की बात कर रही हैं. देन यू पुट एट द डिस्पोजल ऑफ द स्पिरिट an instrument capable of manifesting it otherwise. Yes, I knew several people who in their ordinary state could not write 3 lines without making a mistake. Not only spelling mistakes, but mistakes of language. That is, who could not express one thought clearly. Well, in their moments of spiritual inspiration, they used to write very beautiful things. But all the same, these very beautiful things were not so beautiful as the works of the greatest writers. तो यह कह रही कि ये सच है कि स्पिरिट तुम्हें एक ह्यूमन लेवल का भी एक परफेक्शन दे सकती है, डेफिनेटली. लेकिन वो आपको जो आइडियल है वो है व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, जिनके बारे में शेरविंद कहते हैं कि अगर केवल ये 3 राइटर्स रह जाएं भारतवर्ष में, तो वो सारे यूरोप की जो लाइब्रेरी है ये सब उसके सामने फीकी पड़ जाएगी. वो रिस्पॉन्स था, किसी यूरोपियन ने कहा था कि भारत की सारी जो किताबें आध्यात्मिक वगैरह वो यूरोप की एक लाइब्रेरी के कोने में आ जाएंगी. तो वहाँ शेरविंद कहते हैं कि केवल ये 3 राइटर काफ़ी हैं तुम्हारी सारी कृतियों के पीक पर जाने के लिए. वाल्मीकि कौन है? योगी हैं, पर वाल्मीकि की जो लेखनी है उसकी क्या अप्रिसिएशन है शेरविंद. वो एक पूरा जो नया मीटर जन्म लेता है अनुस्तुप छंद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसमें उन्होंने रामायण लिखी है, कितनी सुंदर. व्यास कौन है? त्रिकाल दर्शा है, लेकिन उन्होंने कहानी भी लिखी है और एक छोटी मोटी नहीं है, मैंने 18 वॉल्यूम्स हैं उसके, और ऐसी अद्भुत कहानी पुराणों में भी उन्होंने जो लिखा है, ऐसी अद्भुत कहानी कि आज तक वो कितनी बार आप पढ़ लो देख लो मुझे तो कोई भी फॉर्मेट में रामायण अगर आ रही हो, इवन कार्टून में, तो थोड़ा मजा आ जाता है कि देखूं जरा क्या लिखी है उन्होंने, कि आज के माइंड को भी वो एक ऐसी घटना जो आज से 4,500 वर्ष पूर्व हुई है. तो ये होती है डबल परफेक्शन, और ये हम लोगों का गोल होना चाहिए. इसके लिए आपको ट्रेन करना पड़ता है, इंटेलेक्ट भी ट्रेन करोगे आप, हार्ट को भी आप एक्सरसाइज दोगे जीवन की कठिनाई में, प्राण को एक्सरसाइज दोगे. जैसे व्यक्ति जब वो कर रहा होता है युद्ध में, तो क्या करता है? अपने प्राण को और शरीर को वो ट्रेन करता है. उसके पास ऑप्शन नहीं है, पर करता है वो ट्रेन. वो नहीं कह सकता कि मैं जा रहा हूँ, थोड़ा नींद आ रही है, थोड़ा मैं सो लूँ, नहीं कह सकता है वो. और ना केवल उसको जाग के रहना, उसका निशाना भी अचूक रहना है. तो जीवन में तो ये सिखाई जाता है, लेकिन इसको हमको डेवलप करना चाहिए। फिर कहती हैं, वैसे तो स्पिरिट ये चीजें जगा सकती हैं, बट सपोजिंग यू टेक ए रियल जीनियस, ए म्यूजिशियन और आर्टिस्ट और राइटर ऑफ जीनियस हु हैज फुल्ली मास्टर्ड हिज इंस्ट्रूमेंट, हु कैन यूज इट टू प्रोड्यूस वर्क्स दैट एक्सप्रेस द अटमोस्ट ह्यूमन पॉसिबिलिटी, इफ यू एड टू दिस ए स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस द सुप्रामेंटल फोर्स, देन यू विल हैव समथिंग ट्रूली डिवाइन। तो यहां पर मां कहती है कि अगर दोनों एंड पे हमको काम करना है, लोअर एंड पर भी और हायर एंड पर भी, विच मेक्स दिस योगा, क्योंकि तब वो आपका यंत्र पूरी तरह तैयार होता है। एंड दिस इज प्रिसाइजली द की टू द एफर्ट शिरोबिंदो वांटेड अस टू मेक। शिरोबिंदो हमें चाहते हैं कि ये नहीं कि आप रिजेक्ट कर दो असली लाइफ, जिस भी फील्ड में, जिस भी दिशा में, टू अराइव एट दैट स्टेट जहां मानवीय विकास भी और आध्यात्मिक विकास भी, और एक पॉइंट है जहां दोनों जुड़ते हैं, इवन साइंटिफिक माइंड के बारे में मां कहती हैं, एक पॉइंट है जहां विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी मीट करेगी। वो ये नहीं जो ये साइंटिफिक बेसिस पर एक्सप्लेन करना, उसकी बात नहीं कर रही है वो। सो दोनों जहां मीट करेंगी, तो ये नहीं कि इसका क्या फायदा है, इसको क्या लेना देना, ये भी नहीं कह रही है कि तुम जैसे हो वैसे कंटिन्यू करो। ये भी वो कहते हैं सिंथेसिस ऑफ योग में कि ठीक है, हम मेडिसिन हैं तो हम डॉक्टर हैं तो हम अपनी मेडिकल प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अंदर में हम भगवान को ऑफर करेंगे। ये भी नहीं, आप मेडिसिन में भी उसकी अल्टीमेट संभावना तक पहुंच जाओगे। मानव के लेवल पर हीलिंग की कैपेसिटीज है, उस ह्यूमन परफेक्शन की रेंज के अंदर है। अब उसमें अगर कोई यंत्र भगवान से जुड़ जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। That is why Aurobindo used to repeat and has always said, you must work from both ends, not let go of one for the other. And certainly, if you want to have a divine consciousness, you must not give up spiritual aspiration. But if you want to become an integral divine being on earth, take good care not to let go of the other end and make your body the best पॉसिबल इंस्ट्रूमेंट। दोनों लेवल पे हमको काम करना है। अंत में कहती हैं, इट इज ए डिजीज ऑफ द ऑर्डिनरी ह्यूमन इंटेलेक्ट कि वो दोनों में भेद करता है, दोनों को दो भागों में बांट देता है। ये एक बीमारी है मानव बुद्धि की। क्या बीमारी है? विच कम्स मोर ओवर फ्रॉम सेपरेशन डिविजन टू मेक ए थिंग ऑलवेज इधर दिस और दैट। एजेंडा में एक जगह लिखती हैं कि पुराने युग में एक अंतर बताती हैं ओल्ड कॉन्शियसनेस और न्यू कॉन्शियसनेस में। कहती है ओल्ड कॉन्शियसनेस में था इधर दिस और दैट, इसमें है दिस एंड दिस। सर्व खलु विदम ब्रह्मम। शेरविन ने भेजे थे कुछ डिसाइपल एयरफोर्स में पायलट बन के या उनके बेटे बच्चों को to fly the aircraft in Second World War. That is the दिशा जिसमें भारतवर्ष जाएगा ही जाएगा, वर्ल्ड को जाना है। और विशेष रूप से हम सबको जो इंटेग्रल योग की बात करते हैं, हमको स्पष्ट रूप से, और इसीलिए आप देखिए आश्रम में ये क्लासेस होती हैं। हालांकि अभी ज़्यादातर वो मुझे पता नहीं लैंग्वेज की क्लासेस होती हैं, पर है यहाँ म्यूजिक आपको सीखना है, एथलेटिक्स में जाना है। अब लोगों को नहीं समझ आता है म्यूजिक का इससे क्या फायदा है। नहीं, आपके अंदर अगर कोई प्रतिभा है, क्षमता है, इसको भी विकसित होना चाहिए, क्योंकि हर दोनों एंड पे आपको काम करना है। इवन वो मानवीय इंस्ट्रूमेंट को रिफाइन करता है, और कुछ नहीं तो पोइट्री है। तो बहुत सुंदर ढंग से एक जगह माता जी कहती हैं, शेरविंद कहते हैं, बिटवीन देम आर्ट म्यूजिक एंड पोइट्री आर ए परफेक्ट एजुकेशन फॉर द सोल। रीड पोइट्री, राइट पोइट्री, ये सब इसका हिस्सा है योग का। किसी ने पूछा था शेरविन से कि भाई पाना तो भगवान को है तो मैं ये पोइट्री क्यों लिखूं, ये क्यों करूं, म्यूजिक क्यों? कहते हाँ, तुम रूखे सूखे भी जा सकते हो या आनंद लेते हुए जा सकते हो। उनका जो अपना तरीका था, गाते बजाते भी जा सकते हो। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि वो लक्ष्य बन जाए और इसको हम भूल जाए। दैट्स ट्रू। वो माँ कहती है कि जो प्राइमरी है वो प्राइमरी है, प्राइमरी आपकी एस्पिरेशन है, और कुछ नहीं कर सकते तो इस एस्पिरेशन को तो पकड़ के रखो। वो तो फंडामेंटल ट्रूथ है। तो वो उन्होंने शुरू में ही If you choose this, you turn your back on that. If you choose that, you turn your back on this. ये दोनों को परस्पर division, विरोध आत्मक, ये एक बीमारी है और इससे हमको बाहर निकलना है. It is an impoverishment, एक विपन्नता है. One must know how to take up everything. अब देखिए यहां everything word पे इंसान जितना मेडिटेट करे उतना कम है. One must know how to take up everything, combine everything, synthesize everything, and then one has an integral realization. यहां everything word जो है मां बार बार इसमें आप उन्होंने कह दिया कोई exception नहीं है. आप किसी भी human activity को लेके दिव्यता के साथ सिंथेसाइज कर सकते हो, लेकिन बशर्ते ये कई बार होता है कि आदमी एक में जाता है तो दूसरी कम हो जाए. ये उन्होंने पहले बता दिया है, क्योंकि कई बार ह्यूमन परफेक्शन में हम चले जाते हैं तो एस्पिरेशन इज प्राइमरी, फर्स्ट थिंग नीडफुल. लेकिन अगर आपको वास्तव में इंटीग्रल डिवाइन लाइफ के लिए प्रस्तुत करना है अपने आप को ईश्वर के प्रति, तो दूसरे एंड पे काम करना नहीं छोड़ना है, उसको भी आपको डेवलप करना है. एक जगह माँ कहती हैं पूर्ण योग और पूर्ण शक्तिशाली योग, और माँ कहती हैं एवरीबडी इज नॉट कॉल्ड फॉर द सेकेंड वन, क्योंकि ये जो मिशनड हैं, जो चोजन हैं, जिसको कहा ना भगवान, इसलिए एक जगह बाइबल में लिखा है मैनी आर कॉल्ड फ्यू आर चोजन. तो वो चोजन इस सेंस में है कि वो आए ही हैं एक विशेष काम करने के लिए भगवान का. नाउ I have given you some encouragement. माँ क्लोज करती कि मैंने तुम लोगों को कि दोनों फिजिकल भी करो, फिजिकल एक्टिविटी भी, इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, लाइफ फोर्स का अलग अलग क्षमताएं, मानव उचित गुण, उनकी भी बात, और साथ में जब वो भगवान के साथ गुथता है तब जो एक संभावना प्रकट होती है वो अद्भुत होती है. जय माँ.